उसके साथ साथ ही सागर और श्रृंगार का सार क्या है। अब इस ब्रह्मांड में ध्यान के साथ थोड़ा 10-15 मिनट पहले यहाँ की बात लेकर ही पता चले, क्योंकि आज सुंदर साथ जरा सी भी शरीर पर कुछ कष्ट होते हैं तो बड़क से कोई भी हो चाहे मैं भी क्यों ना हूं, यही कहते हैं राज्य महाराज ने बहुत दुखी कर रखा है। और कब हम समझेंगे हम कौन हैं, हम कहाँ बैठे हैं, और ये जो कह रहा है शरीर को दुखी कर रहे हैं ये कौन है। जब इतना ही भेद आज दिन तक हम नहीं समझ पाए कि शरीर किसको हो रहा है, कौन दे रहा है, तो आगे की बात क्या कहेंगे। इसके संदर्भ में एक विकरण भी है कि निरंतर में माया आद अनाद की चली जात, अंधेर अंधेर में ही सारे चले जा रहे, निर्गुण स्वर्गुण हो के सब फिरे यही के फिर। ऐसा ये विचित्र विकराल और अंधकूप कुआं है मोह माया का कि यहां का जीव तो बेचारा क्या समझेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके कि हम कौन है, हमारा असल ठिकाना क्या है। तो जब वो त्रैगुण जो सृष्टि के नाथ हैं, छोटी मोटी हस्तियां ना उन्हें समझो उत्तरदेवा को, एक पलक के अंदर संसार को बनाना मिटाना और ये सब रचना करने की शक्ति उनके पास है, तो आप सोचिए कितनी शक्ति वाले। और आज दुनिया कहां भूल गई, कितने विकराल संकट में घरों में मूर्तियां हैं और कहते हैं हम शंकर जी की पूजा करते हैं। क्या शंकर भगवान किसी मूर्ति की पूजा करते हैं? क्या ब्रह्मा जी किसी मूर्ति की पूजा करते हैं? कहें किसको, कहें किसको? दो मिनट अगर कोई सोचे हमें क्या चीज, जिन पर हमें का मतलब जिन जीवों पर परम धाम की सुरता खाली बैठी और कुछ। अब फिर दिल भी यहां श्री राज्य महाराज ने अर्श कर लिया, किसका, हर एक मोमिन का नहीं। ये बड़ी बड़ी बात जो है जो भाई राज्य महाराज वाणी में कही, हक के अंग का नूर जो सो होवे एक ही ठोर, इत थे औरों पसरे पर होवे ना कहूं। तो वो जीव बेचारा क्या करे, क्या समझे, क्या बताए, क्या ना बताए, केवल राज्य महाराज की वाणी से जिनको ये सुध आ गई, उन्होंने संसार में रहते हुए संसार का लोकलाज मर्यादा जो स्वामी जी ने आके छुड़ाया, त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा, तो समझो हमने राज्य महाराज की वाणी को समझ लिया। और अगर संसार के उसी अंधकूप कुएं में घूमते रहे, वाणी क्या करेगी, लाख पाठ कर लो, लाख जाप कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ ना। सूरज निकला पर हमारी आंखें नहीं खुली भी, ये सूरज कैसे है, तो फिर बताओ सूर्य का फायदा क्या हुआ। और फिर अब यहां बैठ के खिलवत का वर्णन दो तरीके से होगा, एक तो शब्दों का अर्थ है और एक मार्फत के अर्थ है कि खिलवत है क्या और कहां पर है, और उसमें यह बताया जाएगा कि असल हमारा स्वरूप क्या है। ये हमारा असल स्वरूप नहीं है, ये हमें देखने के लिए एक साधन मिला है। अब ये यहीं पर ही बेचारा अनादि काल से जीव जन्म ले रहा था, मर रहा था, कर्म कर रहा था। अब जैसे कर्मों का ध्यान दो जरा, इसका बैलेंस था और उधर आत्म की इच्छा भी ऐसे कर्मों को ऐसी चीजों को देखने की थी, तो राजीव महाराज ने एक सोता वहां बैठा। अब उसके कारण से हमें राज्य के चरण मिले, जो सुरता परम धाम की आत्म आके हमारे अंदर बैठी, उस कारण से ही ये वाणी, क्योंकि ये वाणी लाई उनके वास्ते। जीवों को आप लाख सुना लो, लाख समझा लो, अब तो यही कह देता हूं भाई ये हमारी समझ में तो इनका ज्ञान होता, क्यों आज दिन तक संसार में कोई जान ही नहीं सका पार ब्रह्म कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है और उनका थाम कहाँ है। तो जब यही पता नहीं, इसीलिए सारा संसार जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा गुरु, जुदा जुदा परमात्मा का रूप बना के बैठ गया। कहते सबके ग्रंथ हैं एक परमात्मा है और कोई नहीं। अगर उस एक की पहचान किसी को पर कराता को, सवाल तो ये कराता क्यों, लिखा था शास्त्रों में जब तक पराशक्ति, अध्ययन के साथ तीन शक्तियां, तीन बुद्धियां, तीन ज्ञान हैं, तीन ही लोक हैं, एक काल माया का ब्रह्मांड और एक योग माया का ब्रह्मांड और एक परम धाम, तो तीनों के अंदर तीनों तीनों शक्तियां जुदा जुदा काम करती हैं। ये काल माया के ब्रह्मांड का कुल जो कुछ भी मालिक है, ब्रह्मा जी कुल ज्ञान के मालिक है। जितने भी संसार के ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत बने हैं, ये ब्रह्मा जी की बुद्धि से, उन्हीं की बुद्धि सारे संसार में छाई हुई है। और जो चेतन है वो आदि नारायण का कण कण में है, जो गीता में भी कहा क्षरा सर्वाणि भूतानि। उसके बाद पालन पोषण जो जीवों के कर्मों का सारा फाइल है, कंप्यूटराइज है, वो विष्णु भगवान जी के पास। और जो संहार कर देना है उसके मालिक शंकर जी। अब उन्होंने सबने इस प्रकार का माया का जाल डाला हुआ है कि कोई भी जीव स्वर्ग से आगे निकल सके। स्वामी जी ने कहा है ना कि पततिन का मैं पातशाह कैसे बना, स्वामी जी ने अपने को कहा है कि मैं पतित से पतित काम दुनिया में किए तब आगे निकला। सबसे तो बड़ी बात मैंने यहां, स्वामी जी आप कह रहे उन्द्राति क्या तुम कह रही कि मैं कैसे निकली यहां से इस फंद में से, कि मैंने देखा कि भी जिस रास्ते आज दिन तक दुनिया चली है, बड़े बड़े ऋषि, मैं ऋषि, योगी, तपस्वी, वनों में जाके जिन्होंने हड्डियां तोड़ दी हैं, और आगे कौन खड़ा है, जगपति, जगपति सब का जोरावर विष्णु भगवान खड़ा, वो किसी को आगे नहीं जाने देता, और उससे जोरावर ताकतवर शक्तिशाली कोई जीव तो हो नहीं सकता। कहते मैंने सोचा, ये हमें बता रहे कि सुंदर साहब जी मैं कैसे निकला, कि जब मैंने सोचा कि भी अगर मैं भी उन्हीं रास्तों पे चलूंगा, वही योग साधना करूंगा, वही तपस्या करूंगा, उन्हीं भगवानों को मानूंगा, तो ये मेरे से भी तो युद्ध उनका होगा, तो मैं उनको जीत सकूंगा नहीं। पहला काम मैंने क्या किया, उन सब को छोड़ा, और वो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो सब में ली थी कि भी इस रास्ते से तुम पार हो सकते हो, तो मैंने वो भाव लेकर के चुपचाप एक साइड से, तरदेवा नहीं, कुकर्मकांड नहीं, कुधर्म नहीं, कुकर्म नहीं, सब दुनिया की जितनी पकड़पंथी थी सबको एक साथ मिला, कि इस पर चलने से ना कोई भाव से पार हुआ है, और मैं भी कौन हूं, मैं भी नहीं हो सका। स्वामी जी ने आप बीती कि मैं कैसे परमधाम तक पहुंचा, तो मैं अनन्य प्रेम के भाव से कहां पहुंच गया, योग अध्ययन के साथ, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो है योग माया में पहुंचा देती, बिल्कुल सीधी बात, और उसमें भी फिर एक को लेना पड़ेगा जो वहां का सर्वे सर्वा श्री कृष्ण तत्व के सु श्री कृष्ण जी हैं, उनके बिना आप वहां नहीं जा सकते। उसके बाद अब मैंने देखा भी ये तो योग माया आई है, आगे ये ले जा नहीं सकते, तो मैंने सतगुरु जी के ज्ञान को लिया, तब सतगुरु के ज्ञान को लिया कि उससे आगे निराकार के, बरोबर साथ बोलते चलो, मगज में बात आ जाएगी, और भाई हम कोई आपसे ज्यादा थोड़ा कोई वाणी वचन जानते हैं, निराकार के कहते हैं मैं पार तो इस तरह से चली। अब उसके बाद तीन पार जाना था तो फिर सतगुरु जी के ज्ञान का सहारा लिया कि इस तरह से आगे ये सखी भाव था, अब मुझे अनन्य भाव लेना। सखी भाव वो है, ध्यान दो, और अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति में बहुत बड़ा भारी अंतर है। सखी भाव तो ये होता है कि जिसका नाता श्री कृष्ण जी के साथ नहीं भी है तो वो नाता जोड़ के विधिवत यदि चले तो योग माया के उसका बाल स्वरूप और किशोर स्वरूप का अनुभव दर्शन कर सकता है। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, लेकिन कौन से रास्ते से? सखी भाव हुए बजिए बरता। जैसे देवचंद जी का पहले नाता नहीं था, वो ऐसा करते रहे और उनका चित्तवन आने लगा। एक एक चीज को सोच के विचार, और उसके बाद सखी भाव नहीं चलेगी, क्योंकि परम धाम में कोई सखी नहीं, वहां सखी भाव है ही नहीं। अब ध्यान के साथ, हम कहने को तो कह देते हैं कि अनन्य प्रेम चला, स्वामी जी कहते नहीं चलता परम धाम में, अनन्य प्रेम नहीं जाता। ये है गहरी बातें, घबराओ नहीं, वाणी से एक शब्द बाहर नहीं होगा। वो कहां तक ले जाएगा? जाके परम धाम में खड़ा कर देगा, सरोवर सागर के किनारे पर, रंग भवन में नहीं ले जा सकता। तब स्वामी जी कहते मैं जब वहां पहुंची, पहुंच गई, अब मैंने कहा भाई ये सखी भावी जो अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति है, तो अनन्य प्रेम और भक्ति दो चीजें होंगी, एक अनन्य प्रेम करने वाला और दूसरा जिसकी भक्ति की जाए। तो मैं जब वहां पता चले कि यहां कोई भक्ति शक्ति चलनी नहीं, यहां लीला इश्क ही इश्क की है, तो मैंने भक्ति को भी छोड़ा, सतगुरु के ज्ञान को भी छोड़ा, पिकरन पढ़ लेना। ये गहरी बातें हैं सुंदराचार्य जी, ये कटाक्ष की बातें नहीं है, ये केवल जो वाणी में लिखा है उस पर विश्वास करने की बात है, तब जाके आत्मबल पकड़ती है, वरना आत्मबल नहीं पकड़ती। ज्ञान क्या है? अहंकार है। अगर हम इस वाणी को ज्ञान के रूप से लेंगे, अहंकार आ जाएगा, मैंने इतनी वाणी पढ़ ली है, मुझको इतना ज्ञान आ गया है, मेरा अब ये हो गया, बस राज्य से गुम हो गए। वो भी ज्ञान भी स्वामी जी ने वो सतगुरु की वाणी भी छोड़ दी वहां कि नहीं, अब ज्ञान नहीं चाहिए। आगे क्या है? इश्क ही इश्क, उसको ही दुनिया ने जो है अनन्य प्रेम करके कहा कि अनन्य प्रेम के द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है। जो गीता में भी कहा, अर्जुन ने पूछा कि अरे प्रभु क्या वो उत्तम पुरुष पारब्रह्म नहीं मिल सकते? कहने के मिल सकते, लभ्यस्तु मिल सकता है भक्त्या अनन्य। अब भक्ति और भगत वाली जो बात है भाई, दुनिया क्या करती? अब ये बताओ उन्हें जब पता ही नहीं इश्क की लीला है क्या, तो लिखते क्या ग्रंथों में? अनन्य प्रेम करके उन्होंने लिख दिया। अब कहते हैं मैंने अपने सब अंगों में, आत्म के सब अंगों में इश्क औध, यानी रोम रोम के साथ अपने राज्य महाराज से, वो धनी जो सामने रंग माहौल में रहता है उससे मैं लड़ूंगी। तो जब मेरे रोम रोम में इश्क मैंने वहां जाके भर लिया, तो राज्य सिंहासन के छोड़ के मुझे लेने के लिए आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ, ये मार्ग है। अब सुंदर साथ हमें इश्क नहीं मिलता, अरे बाबा यहां धराया क्या? यहां धराया, वो तो वहीं धरा। हमें यहां क्या मिल रहा है? वाणी से लज्जत है राज्य महाराज के उस इश्क की, उन रसों की जो हमें यहां मिल रही। और फिर अक्सर क्या बात होता है, अजी परम धाम में इश्क रबद हुआ था, अब ध्यान से करेजा थाम के बैठना, चर्चा सुननी है तो मार्फत वाली, और शब्दों वाले अर्थ तो सुनने हैं तो वो भी एक मिनट में पढ़ देता। जहां वाहिदत है, जहां एक स्वरूप है, वहां किससे रबद? दिमाग से सोचिए, ये चर्चा इल्म तले वाली नहीं, हम लोग बैठ के मथन करें किससे? रबद वहां होता है जहां दो हो के एक, बोलो 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 बोलो, तो फिर रबद कैसा और किससे रबद, सोचो और विचारो किससे रबद, कैसा रबद, क्या कारण हुआ, राजी ने क्यों दिल में लिया, किसको खेल दिखा, रूहो तुम मेरे तानो, फिर खेल किसको दिखा, और गहराई में चलू रोज चट्टा 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 चट्टा, पकड़ो बात को, जब कह दिया रूहो तुम मेरे तन हो, फिर किसको सहबी, खुद ही अपनी सहबी देखनी थी क्या, अगर कह दें रूहे अलग हैं तो वो परम धाम ही नहीं है जहां दो थे। जैसे सूरज और सूर्य की किरणें एक होती हैं कि दो, तो फिर राज्य और वो तन जो हैं वो एक हैं कि दो, फिर रब किससे, किसका इश्क, वो तो तन ही इश्क के हैं, रबद किससे, कैसा रबद, कोई मूल सुंदर साथ आए दिन तक के छपई को निकाल सका, भी आखिर फिर ये हुआ क्यों, क्यों ऐसी चीज बन गई, और हम बैठे कहां हैं, बोलो परम धाम में बैठे हैं कि कहीं और गए, और अब यहां क्या कहते हैं, हम यहां, बोलो क्या समझा आज दिन तक के हम कहां हैं, जब यही शुद्ध नहीं आई हम हैं कहां और हम क्या हैं, कहां पर हैं, और फिर ये भी हुआ तो क्यों हुआ, कोई इश्क रबद नहीं हुआ, कारण कुछ और था, ये करके ना कारण रबद वाला, केवल आप हक सांच होने को, झूठ भी कुछ नहीं लिखा वाणी में, सारे अपने पर्दे भी खोल के रख दिए, और फिर कभी सोचा है कभी पढ़ा है कि रूहो लो भाई तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खेल दिखाऊंगा तुमको नजर में ले, कि मैं खेल दिखाऊंगा तुमको पहले मैं नजर में ले लूंगा, ले लिया नजर में, हमारे अंदर का इश्क खींच दिया, जो ये तन परम धाम वाले उनके थे जिससे लीला करते थे, खींच दिया, श्यामा जी से इश्क खींचा और अक्षर से सत, बोलो अंग खींचा, अब बन गए खुद सत चिदानंद स्वरूप पूर्ण, अब खुद सारी लीला कर रहे, ना हम यहां आए हैं, ना अक्षर ब्रह्म यहां आया है, ना श्यामा जी यहां आए, वहीं के वहीं फरामोशी का पर्दा, क्या क्या है फरामोशी, क्या परमधाम में फरामोशी हो सकती है, हमारी जितनी हमारे उन तनों में शक्ति जो दी हुई थी वो राजीव राय ने, बोलो बोलो, खींची, हमें नजर में लेके खेल कैसे बनाया, अपनी नजर इधर कर रखी, नहीं समझाई, हमें परम धाम में चरणों में बिठाकर और नजर में लेकर, यानी जिस नजर से, समझने की कोशिश करो, हम श्री राजीव राय की नजर से उनके इश्क प्रेम को हमारे तन पी रहे थे, लीला कर रहे थे, वो उन्होंने बंद कर दी स्टॉप, खींच लिया अपने तन में, अपने तन में, और कहीं नहीं भेजी उसको, और हमें नजर में लेकर, यानी जिस नजर से हम राज्य के नैनों से वो सब रस लेते थे, वो नजर से नजर लेके अपनी नजर राज्य ने कहां घुमा रखी है, अब जागो कैसे जागते हो, लोग जागनियां कर रहे हैं अपनी जागनियां, हम जागनियां कर रहे हैं, करो जागनी, जब तक राजी मरा यहां से नजर वहां घुमाते नहीं, तब तक कोई भी शुद्ध में, बोलो कैसे आओगे, सीधी साधी बातें हैं, यह है खिलवत के राज, और यहां इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं, वाणी, और बोलो वाणी कैसे लिखे, कौन समझेगा इन भेदों को, कौन इस रस को पकड़ेगा कि ओहो बात क्या है। और लिख रखा है बकायदा वाणी में, ये नहीं कि वाणी से बाहर है कोई, मैं तुमको खेल दिखाऊंगा, तुमको नजर में ले लिया, सबको नजर में, और अपनी नजर कहां डाल दी। तो हमारी नजरें किसकी नजर में है? राजी की नजर में। अब जब तक राजी अपनी नजर को यहां से घुमा के वापस ना ले जाए, क्या कर लोगे? मां पतले कब होगी, मां पतले कब होगी, जल्दी मां पतले हो जाए। क्यों भूले भटके फिर रहे हो? आज भी हो सकती है, 10 साल ना हो, क्या करोगे? वाणी पढ़ना छोड़ दोगे क्या? राजी का यकीन छोड़ दोगे? हाँ, वाणी के अनुसार से जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा, क्योंकि वो जो उन्होंने लिख दिया, एक लुगा झूठ ना हो, वही जो बोले हजरत, कि जो खुद आके राज्य महाराज आप इलम की शक्ति से यहां बोले हैं। अब कोई सुंदर सा कारण बताओ कि आखिर फिर ये राज्य महाराज को सूझी क्यों कि मैं अपनी साहबी दिखाऊं, अपना इश्क दिखाऊं, किसको दिखाऊं? कोई और सेकंड वहां पर होती तब तो हम कह देते, बोलो क्या कारण था, कभी नहीं बात पकड़ पाई। अब आज ध्यान से सुनो, जो कहा है ना कि रुको, तुम मेरे से इतने रोज लाड करती थी, मैंने दिल में लिया मैं भी एक लाड कर लूं। वो लाड क्या है? ये हमारे ऊपर थोपना थोपा गया है, आप हक सांचे होने को, बस और कुछ। चार सागरों की लीला परम धाम में राजी करते थे और करेंगे, नहीं समझाई? परम धाम में 8 सागर हैं, लेकिन सदा 4 सागर की लीला होती है, 2, 3, 5 और 7। दूसरा सागर क्या है? रूहों का, यानी श्री राज्य महाराज के जो इश्क के तन हैं, जिनको हम रूहें कहते हैं, आत्माएं कहते हैं, सखियां कहती हैं, वो लीला हमेशा परम। क्यों? उनके तन है। ध्यान के साथ एक एक चीज को समझिए। और तीसरा सागर क्या है? उनकी एक दिल, जिसको खिलवत कहते हैं। खिलवत क्यों है वहां पर, यहां क्यों नहीं है? कि वहां राज्य के ही सारे तन हैं, तो द्वैत आए कहां से? अब वो तन कहां पर है? वहीं के वहीं है कि यहां उतरे? बोलो 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 बोलो, वहीं के वहीं है। वहां तो आज भी एक दिल्ली, वहां कोई दो दिल्ली थी, इसलिए उसको खिलवत कहते। जहां वाहिदत है, एक दिल्ली है, एक स्वरूप है, उसी का नाम खिलवत है। अब रंग महल के बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि अक्षर है सामने और पशु पक्षी, भले वो भी तन लीला के मात्र राज्य में रायके, पर इश्क के तन जो हैं वो केवल वही रंग महल के अंदर हैं, वही खिलवत है, वही राज्य का स्वरूप है। राज्य का स्वरूप खाली एक स्वरूप को मत गिनो, राज्य श्यामा जी और सब सखियां, ये क्या हैं? एक तन। सा वाणी में लिखा कि ये सब क्या हैं? एक तन है, जैसे सूरज और हजारों के अनगिनत जो है किरणें होती हैं, तो उनको जुदा थोड़ा कहते हैं, सूर्य का एक स्वरूप है। इसी तरह से परम धाम की बात है। अब राजी महाराज ने हमारे दिल में उपजा कर कहलवाया कि हमारा इश्क बड़ा है। क्यों? उन्होंने इश्क खेचा, हकीकत को जिस दिन दिल में लिया, ध्यान दो एक एक बात को समझो, जिस दिन हकीकत को अक्षर को दिल में ले लिया, कह रहे भाई इसकी लीला कब करेंगे, उसी दिन से मांगना द्वैत आ गया। अब समझ में आ रही है ना? इससे पहले कभी भी इश्क रबद हुआ नहीं था। जब राज्य महाराज ने हकीकत अक्षर, अक्षर ब्रह्म क्या है, उनके सत्ता का हकीकत का स्वरूप है, उसको दिल में। अब जो राज्य महाराज के दिल में आना है वही हमारे तनों में, बोलो वहां आना है। बतुर्त हमारे दिल में उस दिन से आ गया कि इश्क हमारा बड़ा, यहां से द्वैत शुरू हुआ, क्योंकि राज्य ने दिल में द्वैत में लिया। अब एक एक बात को समझो अच्छी तरह से। क्यों ईश्वरवत हुआ? क्योंकि राजीव राय ने पहले अक्षर ब्रह्म को हृदय में, नहीं तो राजीव राय के दिल में कौन रहता है? श्यामा महारानी, आनंद ही आनंद रहता है, इसलिए कभी यह बात हुई। अब राजीव राय ने जिस दिन से अक्षर ब्रह्म को लिया, तो अक्षर ब्रह्म तो क्या करता है, तोड़ता और फोड़ता है सतंग से, वहां से शुरू हो गया हमारा इष्ट पड़ा। वहां पर मिलके गए और श्यामा जी को साथ लिया और ये सब इश्कर बधुआ और ये सारा कुछ हो गया, कारण खुद बनाया, हमने नहीं मांगा। हमें क्या पता था अक्षर ब्रह्म कौन है, और हमें क्या पता कि योग माया क्या है, हमें क्या सुनते कि ये ब्रह्मांड क्या है, और अभी भी नहीं सुधारी। अगर हकीकत में हमने तारतम ले लिया है और राजी से संबंध जोड़ लिया है, तो फिर हमारी नजर ठीक है। अब ध्यान दो, इस जीव की नजर मूल मिलावे जा सकती है, पर आत्म की नजर जा सकती नहीं। ध्यान से, बहुत गहरी चुभई है। हमारे जीव की नजर जाएगी किससे? इस वाणी की शक्ति से, ये राज्य की शक्ति है। इलम किसका सागर है, बोलिए भाई, इलम की शक्ति किसका सागर है? राज्य का अंग जो है, इलम का अंग है। जो चार सागर राजीव राय ने दिल में लिया, उसमें क्या है? एक नूर अक्षर का स्वरूप, और नूर परम धाम का नूर तेज, और दूसरा सिंगार, चौथा सागर, एक चार छह और आठ। पहला सागर क्या, जो कभी नहीं दिखा सकते, नूर का जो अक्षर का स्वरूप है, जो उनकी वास्तविक सत्ता है, वो सत्ता का स्वरूप रंग माहौल में नहीं है। रंग माहौल में उनके चिदघन और आनंद का स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप नहीं है। तो वो राजी दिल में लेते हैं कि भाई ये चार सागरों की लीला भी तो मैं अपने इश्क के तनों को दिखाऊं कि क्या है भाई, ये लिया कारण बन गया, जो कुछ भी ये सारा रचा रचाया इतने से कारण से रचा। अब यहां वो आठों सागर का जो है हमें अनुभव करा सकते हैं, परम धाम में चार सागरों से पांचवें सागर की लीला दिखा नहीं सकते। अब यहां आठों सागर, इसलिए पहले आते कह दिया सो तो अब जाहिर वह सब विध वतन के सारे विशेषित। अब हमें यहां सुध है, पहला सागर क्या है, दूसरा वो इश्क के तन जो रूहे हैं उनका है, तीसरा उनकी एक दिली है, चौथा सागर श्रृंगार का है, पांचवा सागर इश्क का है, छठा सागर इलम का है, और सातवां सागर निस्बत का है, और आठवां का मेहर का निज स्वरूप है। अब परम धाम में मेहर किस पर करें भाई, सोने वाली पोजीशन मत करो, ऐसी चर्चा शुरू फिर मत करो, फिर किरंतन पिरंतन करा दो, मैं वहां शुरू कर देता हूं। अगर ऐसे रस के अंदर भी आंखें बंद होती हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? बोलो श्री प्राणनाथ, परम धाम में बोलो मेहर किस पर करें, और यहां बोलो मेहर किस पर करें, क्योंकि रोज मेहर के सागर का फिक्र का चक्कर पड़ा रहता है। रूहों पर कहां, रूहें कहां बैठी हैं, बोलो, अरे बोल तो दो, तो मेहर किन पर हो रही है, जीवों पर या रूहों पर है? सोचो, चर्चा वाली बात नहीं, मथन करना है सार को कि हम कहां भटक रहे हैं। आज हमारा जीव उन परम धाम की बैठी हुई आत्माओं से भी सुपीरियर हो गया, यह है मेहर। वो अभी नींद में, फरामोशी में, मतलब उनकी नजर इधर है, और हम यहां बैठ के मूल मिलावे का चितवन कर रहे हैं। विचारों कितनी मेहर है, यह है मेहर। और वो भी जीवों पर क्यों हो गई, कि वो रूहों की, बोलो, नजर उन पर बैठी है, इसलिए वो लटकी हो गई, उनकी लाटरी खुल गई। पर वो भी कौन है जो इसको पीट दे देगा, जो संसार को पीट दे देगा? जय स्वामी जी ने कहा, आओ, जब मैं वहां गया तो धनी आए, मुझे आके गले मेरी आत्म को लगा लिया, मैं यूं जिद जीतिया और तुम्हें दिखा रहा हूं। कि इस तरह से मैं भव से पार निकली और धनी के चरणों में पहुंच गई राज्य की शक्ति से। जीव भी चल रहा है तो राज्य के इलम की शक्ति से चल रहा है। जो यकीन ले करके उस तरह से चलते हैं वो जीव अनुभव करना शुरू करते हैं और तब ज्ञान करते हैं, तब उनको एक तसल्ली हो जाती है कि वाकई इस रास्ते पे चल के मैं आवागमन के चक्रों से छूट कर और भव से पार हो जाता हूं। तो जीव फिर उसी तरह का प्रेम राज्य पर कुर्बान होना, तन मन धन से सेवा करना, वही काम शुरू कर देता। आत्म देख रही है केवल परम धन से। हमारी परातम मूल मिलावे में बैठी राज्य ने जो हमारी नजर देखने के लिए हुई थी उस नजरों को लाकर जीवों पर बिठाया।